करेंगे।
इस संसार में प्रायः मनुष्यों का संबंध देखा जाता है परिवार से। अब कोई कहे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कहे कि इनकी आसक्ति छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, कि कौन छोड़ेगा? और छोड़ देने से ही बस वो भक्ति करने लगेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये तो कोई गारंटी है नहीं। इसलिए भगवान ने जो पथ चलाया है वही उसी पर चलना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि गोपियां तो अपने परिवार छोड़ दी थी कृष्ण के लिए, लेकिन आप भगवान का प्रवचन पढ़िए। उद्धव जिसे कहते हैं कि जो मेरे लिए कर्म छोड़ देता है, अपने स्वजनों को छोड़ देता है, तो उसके स्वजनों का पालन मैं करता हूं, ऐसा वे कहते हैं। गोपियां उपेक्षा करती थी परिवार की, परंतु गोपियों के घर में धन भरा रहता था, सारा काम ठीक से चलता था और गोपियां भी घर के काम को बहुत अच्छे से कर देती थी। यह भागवत में वर्णन है, कोई कभी अभाव नहीं हुआ, घर में किसी बात की कमी नहीं हुई और कभी भी पति आदि विरोध नहीं किए। वहां पर भगवान ऐसी माया रचते थे कि गोपियां दिखाई देती थी अपने अपने पतियों के साथ स्वपार्श्वस्थान। रासलीला में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही थी इधर वृंदावन में, लेकिन सभी गोपों ने देखा कि गोपियां उनके पास हैं। इस तरह से मानते थे। अथवा इसका एक अर्थ होता है कि श्री कृष्ण के पास होना वे अपने पास ही होना मानते थे, इतना अनुकूल भाव से। लेकिन वास्तविकता यह है कि वास्तव में गोपियां वर्तमान थी अपने अपने पतियों के साथ। यह भगवान की व्यवस्था है, भगवान विघटन नहीं होने देते हैं। गोपियों को इस बात का बहुत दुख रहता था कि कुछ गोपियां रासलीला के समय पतियों द्वारा घर में बंद कर दी गई थी, तो उनका शरीर छूट गया, वे मर गए। इस बात से अन्य गोपियां बहुत दुखी रहती। लेकिन जब मथुरा से भगवान ने पत्र लिखा और उद्धव जी के हाथ से भेजा, तो उस पत्र में भगवान ये लिखे कि तुम उन सखियों के लिए शोक मत करो जो शरीर छोड़ दी, ये सब मेरे पास हैं। भगवान ऐसा कहते हैं, लास्ट संदेश यही था, वे सब मेरे पास हैं। कल जड़ शरीर मात्र छूटा, लेकिन वे सब मेरे पास हैं। और वैसे उस शरीर से भी, बाह्य शरीर से भी, वे अपने पतियों के साथ थी। गोपियों को केवल इस बात की आशंका करके शोक हो रहा था, लेकिन वास्तविक स्थिति नहीं थी। एक तो भाव शरीर से कृष्ण के पास थी और दूसरे शरीर से अपने पतियों के पास ही थी। तो भगवान इस जगत में आते हैं तो सबके विकास के लिए, सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। तो सबसे पहले वे देवताओं को सुखी करते हैं, क्योंकि देवता संसार का, संसार की व्यवस्था देखते हैं। देवता यदि सुखी रहते हैं तो सब लोग सुखी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देवता अब विरक्त हो करके लोटा कमंडल ले करके चला तब भगवान का भक्त हुआ, नहीं। देवता तो जैसे हैं वैसे ही रहे, अपने अपने पदों पर रहते हैं और वे भगवान के परम भक्त होते हैं। यह जो मान्यता है कि विरक्त हो जाना चाहिए भगवान के भजन के लिए, ऐसे होना ऐसे होना, ये कोई उचित धारणा नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण से प्रेम करना यह मुख्य बात, और वह प्रेम देखा गया श्री कृष्ण की लीला में कि सभी देवता प्रेम किए भगवान, और देवताओं के धन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके सब कुछ को भगवान ने बढ़ाया। जब लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए ये छोड़ो वे छोड़ो ये छोड़ो, तो लोग नहीं छोड़ते हैं और भगवान की भक्ति से डरते भी हैं। आप देखते हैं संसार में दूसरे लोग जब प्रचार करते हैं तो वे कहते हैं कि तुम हमारे मत को स्वीकार कर लो तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब झूठा होता है। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण को कोई स्वीकार करे तो उसका घर आबाद हो जाता है, निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं ये अमुक देवता तुम्हारा केयर करते हैं, ये केयर करते हैं, ये केयर करते हैं, लेकिन वास्तव में सभी जीवों के कारण सुहृद भगवान कृष्ण है, सुहृदम सर्वभूतानं। तो भगवान के इस स्वभाव को पहचान कर हमें अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में भगवान को बसाना चाहिए। तो हमारे अभ्युदय के लिए भगवान आ रहे हैं और यह भी माता देवकी को आश्वासन दे रहे हैं कि माँ माँ भूत भयम, भय मत करो, माँ को आश्वासन दे रहे भय मत करो। इससे सिद्ध होता है कि देवकी को तो प्रसन्नता तो थी गर्भ में आने से भगवान के, लेकिन रह रह करके भय हो रहा था कि इसको भी कंस मार देगा, बहुत भारी भय में थी, कांपती रहती। तो कहते हैं माँ भूत भयम भोजपते, भोजपति से रावण से कंस से भय मत करो, कंस से भय मत करो, क्योंकि मुमूर्ष हो, अब वो मरणासन है, वो मरने वाला है, 10-11 वर्ष के अंदर ही मर जाए। ये भगवान आ गए तो वो मर गया, जैसे लगता है कि डेथ बेड पर है, ऐसे देवता वर्णन कर रहे हैं, मुमूर्ष हो, अब मरने वाला है, कंस से भय मत करो। गोप्ता जदूनाम भविता तवात्मज, जादवों का रक्षक तुम्हारा पुत्र होगा, तवा आत्मज जदूनाम गोप्ता भविता भविष्यति, तुम्हारा पुत्र जादवों का रक्षक होगा। इसका अर्थ है कि केवल तुम्हारी ही रक्षा नहीं करेगा तुम्हारा पुत्र, समस्त जादवों की, भक्तों की रक्षा करेगा। तो इस तरह से इस श्लोक में बहुत ही सुंदर मंगल संदेश है कि भगवान सब तरह से समृद्ध करते हैं, पोषते हैं, तुम्हारे संबंधियों को, तुम्हारे बंधुओं को, जादवों को तुम्हारा पुत्र पोसेगा। तवय आत्मज कह करके मानो और ममता बढ़ा रहे। पहले तो कहे कि साक्षात भगवान है और अंत में देवता कहते हैं तवय आत्मज, तुम्हारे देह से उत्पन्न तुम्हारा पुत्र जादवों की रक्षा करेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और अब ये मरा हुआ है, चिंता मत करो, हम लोग इस संसार में देखा करते हैं कि प्रायः लोग चिंता करते रहते हैं, किसी न किसी बात की चिंता करते हैं, लेकिन चिंता तो उसे करनी चाहिए जो श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं किया है। जो व्यक्ति भगवान का चरण कमल ग्रहण कर ले उसे वास्तव में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। भगवान चिंता करते हैं और भगवान जिसको बनाना चाहे तो उसको अपनी क्या चिंता करनी है। और जो कभी भगवान बारंबार कहते हैं शोक मत करो, शोक मत करो, जो कहता हूँ करो, पाप लगेगा, इतने लोगों को मारूंगा, ये होगा, वो होगा, दुर्गति होगी, भगवान कहते कुछ नहीं होगा, हम तो हम सर्व पापे मोक्षे समासुच, एक तो पाप लगेगा ही नहीं, भगवत आदेश का पालन करने पर पाप लगे नहीं, लेकिन अर्जुन के मन के अनुसार भगवान बोल रहे हैं यदि लगा और पहले लगा होगा, इस समय लग रहा है, आगे जितना पाप होगा सब मैं खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन भगवान पाप समाप्त करते हैं तो भगवान पापों से विद्ध नहीं होते हैं, अपाप विद्धम उनको लिखा गया। जैसे सूर्य अनादि काल से अंधकार खा जाते हैं, अंधकार नष्ट कर देते हैं, लेकिन सूर्य मलिन नहीं हुए अंधकार, ऐसा नहीं कि सूर्य काला हो गए, रोज अंधकार खा रहे हैं अपने किरणों से, लेकिन फिर भी उनका तेज बना हुआ है। ऐसा नहीं कुछ लोगों का पाप ले लिए और बस सूली पर झूल गए, दूसरे का पाप भोग रहे हैं, वाह रे वाह, दूसरे का पाप भोग रहे हैं। कृष्ण ऐसे नहीं है, वो सूर्य की तरह सबका पाप दूर कर देते हैं, लेकिन वो पाप श्री कृष्ण को छू नहीं पाते। गंगा जी पप नष्ट कर दे रही है प्राणियों की, लेकिन वो मलिन नहीं होती है। बिल्कुल सोच भर रही थी कि मलिन हो जाऊं, लेकिन वो मलिन नहीं होती। तो भगवान सूर्य जब से हैं तब से तो अंधकार खा ही रहे हैं। खा क्या रहे हैं, वो तो उगते हैं तो कोटि कोटि योजन पहले ही अंधकार समाप्त हो जाते। खा क्या है, समाप्त कर देते हैं, इसलिए कहा जाता है खा रहे हैं। तो भगवान पापों से मुक्त कर रहे हैं, तो ये नहीं समझना चाहिए भगवान सब करते हैं या भोगते हैं ले लेते हैं। नहीं नहीं, उनका ऐसा स्वभाव है, उनका तो कोई एक नाम ले तो उसी से सारे पाप ध्वस्त हो जाए, कर्म बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। भगवान कहाँ पाप से संपर्क करेंगे, पाप ऐसे उनको छू सकता है। तो ऐसे पुरुष की शरण लेनी चाहिए ना, ऐसे भगवान की शरण लेनी चाहिए जो हमारी गलती, हम अपराध को, हमारे पापों को अपने आप समाप्त करते हैं। अर्जुन कहे नहीं कि हमारा पाप आप दूर किया कीजिए, लेकिन भगवान कहते मैं करूंगा, तुम चिंता करो। इसके द्वारा यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान ये कहते हैं कि तुम कंटिन्यूअस पाप करो और हम दूर किया करें, यह अर्थ नहीं है। लेकिन जो भी भूल चुक हो जाती है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं, क्षमा करते हैं और तरह से पोषते हैं। तो ऐसे परम आश्रय श्री कृष्ण को अपने लिए चुनना चाहिए, अपने परिवार के लिए कृष्ण को वरण करना चाहिए, अपने लिए, अपने देश के लिए, गांव के लिए, सबके लिए। कौन भजनीय है तो कृष्ण, बस एको देवम, एको देवो देव की पुत्र है, वो एक ही आद्य है देव की पुत्र, और एक ही गीत होना चाहिए। क्या है वो, है देव की पुत्र का नाम, एक ही गान, एक ही मंत्र, एको मंत्रस्तस्य नामाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहीं कर्म होना चाहिए उनकी सेवा, एको देवो देवी पुत्र, और कैसे है कर्मा पी को तस्य देवस्य सेवा, और एकम शास्त्रम देव की पुत्र, ये पहले है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र ने जो शास्त्र दिया है भगवत गीता, बस एक ही शास्त्र है। अर्थ है कि वो सफिशियंट है, एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र, एकम मंत्रम तस्य नामानि यानि कर्मा एको तस्य देवस्य सेवा, एक ही शास्त्र है भगवत गीता, श्रीपाद शंकराचार्य का लिखा हुआ है, वास्तव में श्रीपाद रामानुजाचार्य का लिखा हुआ। तो इस तरह से समझना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, या सबके लिए वास्तव में आराध्य हैं भगवान श्री के, ग्रहण करना चाहिए। सुख समृद्धि छा करके ही रहती है। वृंदावन में बहुत सौ वर्ष पहले एक महात्मा हो गए हैं वैष्णव रसिक, हरि राम व्यास, तो वे पद लिखे हैं, तो लिखते हैं कि देखे सुने न भक्त भिखारी, हमने न तो सुना है न देखा है कि भगवान कृष्ण का भक्त कोई भिखारी हो। देखे सुने न भक्त भिखारी, बल्कि हम लोग क्या क्या सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में ही सबसे टॉप क्लास के धनी लोग हुए, जैसे ध्रुव महाराज, अब उनके बराबर तो कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी उनसे बहुत नीचे हैं दुनिया में, और शिव जी के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, वे तो हैं परम ईश्वर, लेकिन उनके पास रहता नहीं है कुछ, कपड़ा तक नहीं है तो और क्या रहे। और सप्तर्षि आदि हैं, ये भी धनी हैं, तो ये सब तो परिक्रमा लगाते हैं, ध्रुव महाराज ध्रुव लोक की परिक्रमा लगाते रहते हैं, और हमेशा चौबीसों घंटे, इतना बड़ा धनी व्यक्ति, कितने दिन में इतना बड़ा धन मिला, 6 महीने में, क्या करने से, महामंत्र जपने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जपने से वे पा गए। ध्रुव सगलान जप्यऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ,
रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं ध्रुव महाराज ने क्या किया, वे नाम जपे, वो भी बड़े दुखी हृदय से जप रहे थे, अपने सौतेली माता की याद आती थी तो बड़े अमर्ष से ग्लानी से जप रहे थे, लेकिन अचल और अनुपम स्थान पा गए और बहुत कम समय में। भगवान का नाम जप करके और वैकुंठ पा गए, ध्रुव लोक पा गए। ध्रुव सगलान जपेऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम। कोई वैसा धनी नहीं है। नारद जी से ध्रुव महाराज ने कहा था या पूरा राज दिला देता हूं, तो ध्रुव महाराज कहते हैं बाप का राज, बाप के बाप मनु और मनु के बाप ब्रह्मा को भी जो राज नहीं मिला है वो लेना है मुझे। अब मुझे मेरे कुल में जिस धन को कोई नहीं पाया है और दूसरे के कुल में भी जन्म लेने वालों को जो धन नहीं मिला है मैं वो लेकर के रहूंगा। इसलिए अब मेरे आंखों के सामने भगवान विष्णु का चरण कमल है, किसी भी हालत में मुझे भगवान से भेंट करनी है। तब नारद जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा निर्णय अच्छा है, तो इसके लिए जाओ वृंदावन, मधुबन जाओ, वो स्थान ऐसा है कि बहुत शीघ्र भगवान की प्राप्ति कराएगा। और नारद जी ने मधुबन का विशेषण दिया कि हरे चरण चर्चितम सानिध्यम नित्यदा हरे। ब्रज में मधुबन में भगवान नित्य रहते हैं, केवल वहां जाने मात्र से भगवान का संग मिलता है, न हो अनुभव न हो, लेकिन वास्तव में भगवान साथ में है हम लोगों। कोई भी व्यक्ति जो ब्रजमंडल में आता है तो भगवान का साथ मिलता है उसे, क्योंकि वहां रहते ही है। यहाँ गोचारण करते हैं, रास करते हैं, जलकेली करते हैं, गोवर्धन लिए हैं, गुफाओं में खेलते हैं, यहाँ रहते हैं वे। अच्छा, ब्रज का जहां भी वन भागवत में आया है तो वहां अवश्य लिखा गया है कि भगवान वहां नित्य रहते हैं, सर्वत्र यह बात लिखी गई है भगवान यहाँ नित्य रहते हैं। श्रीपद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक बार कथा कह रहे थे, तो कह रहे थे कि और तीर्थ में भगवान को बुलाना पड़ता है, बुलाते हैं भक्त लोग का दर्शन दीजिए आई आई, लेकिन वृंदावन उनका घर है, यहाँ तो भगवान बुलाते हैं दूसरों को, उनको बुलाना ही पड़ता है। यहाँ वे रहते ही है, तो अब जो किसी का अपना घर हो तो कोई ये थोड़े कहेगा कि आकर थोड़ा अपने घर में भी रहा कीजिए, ऐसा तो कहेगा नहीं। और ऐसा कभी नहीं है कि कोई वृंदावन पूछा तब तक भगवान कहीं एब्सेंट है, कहीं दूर चले गए हैं, नहीं, यहाँ रहते ही है। नित्यम शब्द का प्रयोग किया गया, सानिध्यम नित्यदा हरे शरण चर्चितम। तत्तात गच्छ भद्रम ते जमनायास्तटम सुचि पुण्यम मधुबनम जत्र सानिध्यम नित्यदा हरे है। ध्रुव महाराज को कहा बेटा यदि तुम श्री कृष्ण को पाना चाहते हो, विष्णु को पाना चाहते हो, तो सबसे शक्तिशाली देश का नाम बता रहा हूँ, मधुबन जाओ। यहाँ मधुबन से तात्पर्य संपूर्ण ब्रजमंडल है। आप गोकुल कहिए या वृंदावन कहिए या मथुरा कहिए या मधुबन, इसका तात्पर्य 84 कोस ब्रजमंडल होता है। तो वहां जाओ, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। कई एक तो ब्रजमंडल हेल्प करेगा, दूसरे भगवान की लीला स्थली जमुना जी तुम्हारी मदद करेंगे। जमुना में स्नान करना, भगवान की पूजा करना और यह मंत्र जपना नारद जी ने दिया, और यह करके ध्रुव महाराज 6 महीने के भी भगवान को पा गए। यदि वो ध्रुव लोग गए बाद में, लेकिन ध्रुव लोग तो इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष राज्य करके गए, 36,000 वर्ष के बाद गए, लेकिन वो 5वें 6वें वर्ष में ही वो कमा लिए थे ध्रुव लोग भगवान का भजन करके। तो ऐसा कौन व्यक्ति समर्थ बताइए, कौन देवता या कौन राध्य जो इस तरह से दे सकता है। अब कोई व्यक्ति दूसरे देवता की शरण ले तो देवता अगर पूरी ताकत लगाएगा जितना है उतना देगा, और क्या करेगा बताइए, जितना है उतना ही देगा ना, ज्यादा ज्यादा ताकत लगाए तो दम निकलेगा उसका देने में। अच्छा ये भी बताइए, देवताओं का ऐसा जितना वो रखते उतना नहीं दे सकते। कोई भिखमंगा की सेठ के पास जाए मांगने के लिए तो पूरा कोठी हवेली सारा थोड़े लिख देता है, 2-4 रुपया दिया कहता है जाओ ठीक। लेकिन भगवान भगवान का स्वभाव है जितना है उतना तो नहीं देते हैं और अपने को भी दे देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन भगवान देने के बाद भी फिर बचे रहते हैं, ये उनका स्वभाव है, वो अनंत है। इस प्रकार की कथा रामायण में है कि जब विभीषण जी भगवान की शरण में आ रहे थे, वानरों में बहुत चर्चा चलने लगी कि रावण का भाई आ रहा है। रावण तो प्रसिद्ध था, सीता जी को चुरा कर ले गया था, अब तक सीता जी वहीं थे, हनुमान जी पता लगा कर आ गए थे। ऐसे खल रावण का भाई भी तो सेकंड रावण ही होगा, ये कुछ वानर यही सोच रहे थे। जैसे सुग्रीव जी राजनी में विशारद थे, तो वे सोच रहे थे रावण का भाई मिलना रहा है तो निश्चित भेद हमारा ले न सकावा, वो दुष्ट हमारा भेद लेने आ रहा। तो भगवान के चर्चा चलने लगी, किसी ने आकर कहा कि आवा मिलन दशानन भाई, दशानन का दसम का भाई आपसे मिल आया। तो भगवान थोड़ा सा चकित हुए कि लीला किए दशान रावण का भाई आ रहा है। अच्छा, तो भगवान कुछ मंतव्य सुनना चाहते थे अन्य वानरों के, भगवान के सलाहकार थे। भगवान के सलाहकार देवता नहीं थे, मनुष्य नहीं थे, यही वानर भालू थे। भगवान इतना मान देते हैं, लेकिन बड़े एक्सपीरियंस्ड भालू थे, उसमें साधारण नहीं थे। तो आपस में गोष्ठी हो लगी, इष्ट गोष्ठी होने लगी, अब क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार करना है। तो भगवान चुप है। कुछ वानर कहने लगे, निश्चित ही भेद लेने आया है, इसलिए उसको यही बांध करके रख लिया जाए, यहाँ सूचना लंका में जाकर न दे पाए। और हनुमान जी जानते थे कि वो तो भक्त है, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना है। हनुमान जी दीक्षा देकर आए थे लंका में, विभीषण जी को सब संतोना देकर आए थे, तो जानते थे वो तो शरण में आ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी थोड़ा चुप थे, वो सुनना चाहते थे और बात। तो सुग्रीव जी ने साफ कर दिया, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको बांधा जाए, यहां से नहीं मत दीजिए, जब रावण का वध हो जाएगा तब इसको फिर कर दो, बाद में चला जाए। कोई कहते थे कि नहीं, अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका हाथ काट लेना चाहिए, उसका ये करना चाहिए, उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, जीभ काट करके छोड़ दो, क्या जाकर बताएगा। मुझे इस प्रकार की नीति है राजाओं की। तो बहुत बहुत बातें रही थी, या उसको आने ही मत दो, वहीं से भगा दो, कुछ लोग कह रहे थे ऐसा। तो भगवान ने कहा तो ये तो ठीक है, ऐसा अगर भेद लेना रहा होगा तो हमें की चिंता नहीं है, क्योंकि जगमह सखा निसाचर देते लक्ष्मण हन निस्महते। एक साचर की बात क्या करते हो, संसार के सारे राक्षसों को लक्ष्मण आधे पल में मर सकते हैं, उसकी चिंता नहीं है। भेद ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, हमें उसकी चिंता नहीं है। नहीं, ये पता लगाओ कि कहीं सचमुच शरण में आ रहा है क्या, अगर शरण में आ रहा होगा तो मैं उसे प्राण की तरह रक्षा करूंगा, उसको शरण में रखूंगा और उसे लंका का राजा बनाऊंगा। लंका का राजा बनेंगे, फिर वही एक रावण को मार कर दूसरा रावण नियुक्त करेंगे। तो ऐसा महात्मा लोग कथा कहा करते हैं कि सुग्रीव जी बहस करने लगे, कहने लगे कि हाँ, विभीषण आपकी शरण में आएगा तो लंका का राजा बना देंगे, और रावण शरण में आ जाएगा तो क्या करेंगे। शरण में आ जाए, शरण में आ, रावण शरण में आएगा तो क्या करेंगे। तो भगवान कहते हैं उसे अयोध्या का राजा बनाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान देते हैं तो यह मान कर देते हैं कि कुछ नहीं दिया, और देवता लोग देते हैं तो उनका दम सरक जाता है, वो बहुत काल तक याद रहते हैं, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया, बाप रे बाप, इतना नहीं देना चाहिए था, बहुत दे दिया। और वो भी बहुत कष्ट के बाद देते। लिखा गया है कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात सोई संपदा का की सम। लेकिन विभीषण को वह संपत्ति कैसे मिली, केवल गर्दन झुका दिया भगवान को, काटना नहीं पड़ा। तो एक को मस्तक काट कर दिया तब लंका का राज मिला, और एक आकर केवल प्रणाम कर दिया बस लंका का राज मिल गया। तो आप जरा विचार कीजिए, भजनीय वास्तव में कृष्ण, स्वयं भगवान शिव आकर के स्तुति कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी आकर स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं, हमारे परिवार को पोसेंगे, हमको पोसेंगे, देश को पोसेंगे, सब कुछ ठीक रहे। भगवान के शरण में होना चाहिए। वास्तव में सारा दुख कृष्ण को भूलने के कारण है, ये भगवान का स्वभाव है। वे देते हैं तो अफसोस करते हैं कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, सब कुछ दे करके भी अफसोस करते कि नहीं दिया, और सामने देने में भी उनको संकोच होता है। ये प्रश्न उठता है कि सुदामा जी को भगवान ने सामने ही कुछ क्यों नहीं पैसा दिया, 2-4 करोड़ दे दिए होते, कम से कम चेक भी दे दिए होते या और भी तरह से कह दिए होते कि आपके लिए मैं घर बनवा दिया, अब जाइए। और एक ही रात सुदामा जी रहे, भागवत के अनुसार एक रात रहे, क्योंकि सुदामा जी को वहां रहने में बड़ा संकोच होता था, उन सुंदर पलंगों पर बैठने में, उन सोने की थालियों में खाने में, और भगवान हमेशा लिंगन करते थे, बैठाते थे, और यह भी भगवान ने नहीं किया कि चलो खूब बढ़िया रेशमी वस्त्र पहना दे उनको, जैसे फटे पुराने धोती थी भगवान भी छोड़ दिए वैसे ही, और फिर भी स्वागत में लगी हुई थी भगवान की रानियां, कोई पंखा झलती थी, वो तो दरिद्र ब्राह्मण शरीर में न सुभरा था, गंदी धोती थी फटी पुरानी, और फिर सेवा ऐसे चल रही थी, तो सुदामा जी तो जल्दी भागना चाहते थे रहना नहीं चाहते थे वहां पर और भगवान की भी अद्भुत लीला है, भगवान चाहते तो एक क्षण में उनका शरीर ठीक कर सकते थे, कपड़ा तो गंजा ही था पहना सकते थे, वो सब नहीं थी। भगवान चलते समय गमछा भी नहीं दिए कि ये आपकी धोती फट गई है इसको पहन लीजिए, कुछ नहीं किए। अच्छा, जब रानियों ने ये सुना, तो सुदर्शन सिंह चक्र जी लिखे हैं, जब रानियों ने ये सुना कि ये कहीं दिन रहने वाले हैं और ये कहीं रात, तो और निमंत्रण आया कि हमारा भोजन कर ले, हमारा भोजन कर ले, 16108 घर से निमंत्रण आए। तो भगवान ने सुदामा जी से कहा कि आपको कम से कम 1008 दिन तो यहाँ रुकना होगा। तो 1008 दिन वो धोती चलने वाली थी एक हजार आठ दिन रहिए, क्योंकि आपकी भाभियां इतना ज्यादा संख्या में हैं, हम किसको मना करें, और एक के घर जाएंगे तो दूसरा रंज होगी, हमको यहाँ रहना है ना, आप जो चले जाए तो आप अपने भाभियों की इच्छा पूरी कीजिए, आप रहिए। और सुदामा जी तो कहते नहीं, हम सवेरे चले जाएंगे, हम सवेरे। तब भगवान ने सूचना भेज दिया अपने पत्नियों के पास कि सुदामा जी सवेरे जाने वाले हैं। तब तो सब अपने घरों में अब 56 पकवान कुकिंग करना चालू कर दिए, वो आज ही भर रहेंगे तो हमारा खा ले, हमारा खा ले, हमारा खा ले। तो चक्र जी कहते थे कि थालियों की ढेर पहाड़ जैसे गंज गई और सुदामा जी के खाने के लिए। अब सुदामा जी क्या करें, और सुदामा जी के सामने अगर एक थाली भी रखी जाए तो सुदामा जी को पता ही नहीं था कि पहले क्या खाना चाहिए, ऐसा वो सुने ही नहीं थे, पकवान खाने की तो बात ही क्या है। तो सुदामा जी तो संकोच में एकदम दब रहे थे कि मैं नहीं आया होता तो ठीक होता, अब किसका किसका खाए, वो सब कहते हमारा खा लीजिए, हमारा खा लीजिए, आप इतना जल्दी जा रहे हैं क्या किया, जब हमारा खा लीजिए, हमारा खा लीजिए। तो भगवान ने कहा ऐसा कीजिए कि सभी थाली में से एक एक कौर खा लीजिए। तो सुदामा जी कहे फिर भी तो 16,000 कौर कैसे मैं खाऊंगा, कैसे खा सकते। अच्छा, किसी तरह से मान लीजिए थोड़ा थोड़ा चक है, चक जी लिखते हैं तब तक 16,000 गिलास में अमृत जैसा पेय आ रहा था, अचार आ रहा था, विविध आइटम जितना था सब 16,000 आ रहा था इतना। तो अंत में अब सुदामा जी तो खाते खाते कुछ पेट ज्यादा भर गया, भगवान से कहने लगे आप नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तो सब कुछ खाने के बाद 16,105 आया और सुदामा जी तो जिंदगी भर पान देखे ही नहीं थे, खाने की बात तो वो तो ब्राह्मण थे, निर्धन ब्राह्मण। और भगवान कहने लगे भाई ये तो खाना पड़ेगा सब, क्योंकि अब हम क्या करें, आप उनको समझाइए जो ला रही है। अब सुदामा जी कहने लगे कि हम पान कभी नहीं खाए हैं, हमको ये मत खाने दो, ये मत खाने दो, लेकिन फिर भी कुछ खाए। तो इसके बाद पाचक दवाइयां आई, वो भी बहुत ज्यादा। और जब सवेरा हुआ, रात भर तो गुरुकुल की बातें होती रही, सोने भी नहीं दिए कृष्ण ठीक से, मतलब नींद भी नहीं आई रात भर। भगवान इतना प्रेम किए कि मित्र वो याद आ रही है, उस दिन हम लोग गुरु के लिए लकड़ी लाने गए थे, फल फूल लाने गए थे, तो वर्षा आ गई, हम लोग रात भर भींगे थे, तो गुरु जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बिना पढ़े तुम लोगों को ज्ञान हो जाएगा, तो याद है। और आप तो शुरू से ही बहुत विरक्त जैसे रहते थे, लेकिन आपने विवाह किया कि नहीं? और उनकी पत्नी ने भेजा था ये सब, चावल खा चुके थे उसके पास। तो आपने विवाह किया कि नहीं? विवाह किए तो कैसे, घर का क्या हालचाल है, आपका जॉब क्या, क्या काम करते हैं? पूजा पाठ करते हैं तो आपको मिलता है घर गृहस्थी ठीक चल रही है ना? अब क्या सुदामा जी बतावे कि ठीक चल रही है। ठीक क्या चल रही थी, जब कृष्ण को देने के लिए भेंट चार घरों से चार मुट्ठी चिवड़ा मांगा गया, और चारों मुट्ठी चार किस्म का चिवड़ा था, और उसको लेकर आने के लिए फटा पुराना कपड़ा था उसमें बांध करके स्त्री ने दिया था, और कहा था कि इसको संभाल करके लेकर जाइएगा, नहीं तो रास्ते में ही सब बो दिया जाएगा, फट जाएगा। तो इस तरह से सुदामा जी गए थे, लेकिन भगवान खूब पूछ रहे थे कैसे घर चल रहा है, और बच्चे ठीक हैं, हमारी भाभी कैसी है, ऐसे भगवान पूछ रहे थे। और आपने जो मुझे दिया चावल, तो मैं भक्तों के दिए हुए छोटे से उपहार को भी बहुत अधिक ग्रहण करता हूँ। भगवान यही कह रहे थे कि आपने हमें अच्छा दिया, लेकिन मैं भी आपको दूंगा, इसकी चर्चा भगवान ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि भगवान ये बार बार सोचते थे कि सुदामा ने मुझे जितना दिया है उतना मैं दे नहीं पाऊंगा। क्यों? कि इसकी जितनी औकात है, जितनी शक्ति है, उस शक्ति से बाहर दिया है मुझे, और मैं अपनी शक्ति भर भी नहीं देने जा रहा हूं। तो भगवान को बड़ा शर्म लग रही थी कि ये कहना कि मैं आपके लिए घर बनवा दिया, चाहिए किया हो क्या, भगवान कह नहीं पाते थे। और वास्तव में अगर तुलना करके देखा जाए तो सुदामा जी ने जो दिया भगवान उतना कहां दिए, लेकिन एक दृष्टि से भगवान ने बहुत दिया। तो जब सुदामा जी चले गए सवेरे, कोई एक पैसा नगद नहीं, कुछ नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो सुदामा जी रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि भगवान ने हमको क्यों नहीं दिया, बहुत अनुकूल भाव से सोच रहे हैं कि भगवान ये सोचे कि ये ब्राह्मण धन पा करके फिर विषय भोग में लग जाएगा, इसकी इंद्रियां बस में नहीं रहेंगी, मेरा भजन छोड़ देगा, यही इसी से कृपा करके उन्होंने कुछ नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस तरह से सोचते जा रहे। लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचे जहां उनका घर था, तो सुदामा जी को पहले तो यह भ्रम हुआ कि मैं पुनः द्वारका ही आ गया रास्ता भूल करके, क्योंकि ठीक द्वारका जैसे था वैसे ही पूरा नगर बन गया था, ठीक वैसे ही कला, वैसे ही चमक रहे थे भवन सब कुछ, और नगर निवासी भी उसी तरह से देवता जैसे दिख रहे। तो सुदामा जी तो बड़ा फिर बड़ी कि हमारा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया, ये कहाँ चला आया। फिर बाद में जब गांव के चारों तरफ देखते हैं कि उधर वो नदी थी, उधर वो पेड़ था, तो देखे तो वो तो वही है। तो सोचे कि कोई राजा रात में ही कोई प्लॉटिंग करके बना दिया, क्या किया यहाँ। कौन रात भर में ही यह राजा आ करके बनाया, और हमारी झोपड़ी जो थी वो कहाँ फेंकी गई कि जला दिया, क्या किया। अरे भगवान इतना घाटा, एक तो दरिद्रता में जीवन बीत रहा था और उस पर अब वो भी अवस्थान भी छीन लिया गया, क्या हुआ। सुदामा मंदिर देख डरी, सूरदास जी ने गाया है, सुदामा उस घर को देख कर डर गए। कहाँ गईल मेरी राम मड़ैया, कहाँ के भूप उतरी, कहाँ मेरी मड़ैया चली गई, कहाँ मेरी झोपड़ी गई और कहाँ का राजा आ गया। हमें सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तब तक लक्ष्मी जी के समान, रुक्मिणी जी के समान सुंदरी एक स्त्री थाली में आरती सजा करके आई और उसके साथ बहुत से सब। तो बाद में सुदामा जी तो पहचान नहीं पाए कि यह उनकी पत्नी है, तब दूसरी स्त्री ने बताया कि ये आपकी पत्नी है और ये जो भवन बना है सब द्वारकाधीश की व्यवस्था है, ये आपके मित्र ने बनाया है, विश्वकर्मा जी को आज्ञा देकर के रात में ही सब कुछ बनाया गया। तो भागवत में लिखा गया है कि वहाँ रुके रहे, जब जो ही सुने सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए और हृदय गदगद हो गया, वाणी गदगद हो गई और लगे कहने ओहो कितना संकोची हैं वे, इतना दे करके भी वे मुख से कहे नहीं कि मैं कुछ दे रहा। तो सुदामा जी यही कहते हैं कि जन्म जन्म में मुझे कृष्ण की मित्रता चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, भक्त के सबसे बड़े धन भगवान। तो इस तरह से भगवान देते हैं तो संकोच बोलते भी नहीं है कि बहुत दिया या ये दिया ये दिया, परोक्ष में देते हैं। तो सुदामा जी वहां याद करते हैं कि प्रायः बादल वर्षा करते हैं तो रात में करते हैं, जब किसान सो जाते हैं तो रात्रि में खेतों में वर्षा होती, इसी तरह से प्रभु किसी भक्त को देते हैं तो परोक्ष में देते हैं। दूसरे लोग देते हैं तो बहुत कह रहे आपको दे रहा हूं याद रखिएगा, ये कीजिएगा कीजिए, भगवान इस तरह देते हैं। तो यही प्रभु जैसे सुदामा जी के हैं वैसे हमारे भी हैं, और गीता में बारंबार कहते हैं मैं ही दी हूँ, मैं ही बता हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही पोष रहा हूँ। और वैसे भी जो परिवार का काम चल रहा है वास्तव में भगवान ही चला रहे हैं, ये विश्वास करना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि से या हमारे बिजनेस से हमें जो उपाय से चल रहा है, नहीं, वो भगवान चला रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान पर निर्भर कर विश्वास करता है तो उसका कई गुना अच्छा लगता है, और प्राय सब चिंता होती ही है हमारा ये हो हमारा ये हो, तो क्यों नहीं द्वारकाधीश को अपने जीवन की बागडोर सौंप दी जाए, ठीक है आप कीजिए। भगवान को इसमें आनंद आता है कि उन पर कोई भरोसा करे, उनका आश्रय ले ले, भगवान पर भार नहीं होता। तो इस तरह से देवता लोग माता दुखी से कह रहे हैं कि आप पुत्र हमों का रक्षक है, जादुओं का रक्षक है, आपका रक्षक है, कंस निश्चित मरेगा, चिंता मत कीजिए। तो माता देवकी को एक तरह से प्रीचिंग ताजा है देवताओं के द्वारा कि आप क्यों चिंता कर रही हैं, कंस मर चुका है आप यही समझिए और समस्त जादव फूलेंगे फलेंगे, आपका पुत्र सबको पोसेगा। तो शास्त्र के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है, वास्तव में हम लोगों के लिए दिया जाता है, हम लोगों को कहा जाता है कि इसको सुनिए इसको पढ़िए, तो सुन पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के गुण को समझा जाता है। इस तरह से हमें कृष्ण ग्रहण करना चाहिए, परिवार सुखी रहेगा, हम सुखी रहेंगे, समाज सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा, सब सुखी रहेगा। तो श्री कृष्ण को ग्रहण करना चाहिए और इसके बाद शाम को हम थोड़ी सी कथा कहें, भगवान किस तरह प्रकट हुए, उनके प्राकट्य की कथा कहें, अभी तो गर्भ में है तो इसलिए गर्भ स्तुति का श्लोक कहेंगे। लगभग ये भागवत सप्ताह समाप्त होने को है लेकिन हम लोग तो बहुत कम सेक्शन पकड़ पाए भागवत का 7 दिन में, ठीक से 3 अध्याय भी पूर्ण नहीं कर पाए, यहाँ तो एक ही श्लोक की चर्चा हो। तो श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय है, 335 अध्याय की अगर इस रफ्तार कथा कही जाए तो हम कम से कम 100 सप्ताह तो लग जाए 100 सप्ताह में, वो भी एक एक अध्याय ऐसा है जैसे 10 स्तुति 87वां अध्याय दशम स्कंध का है कि 2 अलोक से अधिक कथा नहीं कही जा सकती है, एक कथा प्रथम सीटिंग में, दूसरा श्लोक दूसरे सीटिंग, तो उसमें ही 15-20 सप्ताह हो जाए। इस तरह का, जैसे ब्रह्मा जी की स्तुति है 14वें अध्याय में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन भी तो इसी के लिए है ना, भगवान काफी दिन जी दिए हैं, तो पढ़ना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, प्रभुपाद जी का टेप सुनना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना, तो इस तरह से लगे रहना चाहिए। तो इस वृंदावन धाम में और जन्माष्टमी के अवसर पर इसे कृष्ण बलराम मंदिर के आंगण में हम लोग भगवान की चर्चा किए, और इस भगवान के गुणानुवाद में हम वृंदावन के व्यवस्थापगण का मैनेजमेंट पूर्ण हाथ है। यदि ये व्यवस्थाएं नहीं किए होते तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम वैसे भूरी धन्यवाद देते हैं यहाँ के व्यवस्थापकों को कि भगवान ने इनको ऐसी शुभ मत दी। तो प्रत्येक वर्ष ये अवसर, इस शुभ अवसर और इस शुभ देश में मिलता है हम लोगों को, हम तो अपने को बहुत आभारी मानते हैं महामना प्रभु का जो इकरा करके अवसर देते। मैं पहले सोच रहा था कि एक दिन लेट जाऊंगा यहाँ पर, सोच रहा था लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था कि नहीं, चलना चाहिए समय से, चलना चाहिए समय से, हाँ देर से, हाँ। मैं सोचता था कि एक दिन देर से आऊंगा, एक दिन दूसरे भक्त कुछ कथा कहेंगे, और मेरे मन में ये भी इच्छा थी कि थोड़ा दूसरों को भी निकलना चाहिए, कहना चाहिए, हम पर ही कब तक भार रहे, मैं ये भी सोच रहा था। तो मैं वैष्णव दास से कह दिया था कि आप लोग हैं ना, इसको ले चलिए कुछ लोग मिल करके, तब तक हम आएंगे। लेकिन मैं लंदन में था और मुझे इतनी याद वृंदावन की आने लगी, खास करके सावन पूर्णिमा की, और मैं कई साल से रहा हूँ यहाँ, मिस नहीं किया हूँ पूर्णिमा। तो मेरे मन में आया कि अब तो चलना चाहिए, चलना चाहिए, तो मैं तत्काल ही फोन कराया आरक्षण के लिए, और भगवान की कृपा से मिल गया। तो मैं राधा रमण को कहा कि आप जो भी प्रोग्राम है आप यहाँ कीजिए, अब तो मैं चल आया। ये लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि वो मेनर में प्रोग्राम है, संडे को प्रोग्राम है, सैटरडे को है। मैं कहा किसी भी डे को प्रोग्राम हो अब हम चले। वृंदावन धाम की कृपा से मैं तो यहाँ भाग करके आ गया। तो सब लोग आश्चर्य करते थे, आप पहले आ गए। तो यह भी एक शक्ति है कि वह समय पर हमको पहुंचा दिए बलराम पूर्णिमा के दिन, और मैं आकर के बहुत प्रसन्न हुआ। मैं सोचा मैं वृंदावन मंदिर का हूँ, अपने घर का हूँ, और साल में यही एक सेवा मैं करता हूँ, यह भी अगर देर से करूँ तो ठीक नहीं है, तो मैं मुझे कहना चाहिए। तो यहाँ के भक्तों ने, विशेषकर मैनेजमेंट ने जो सदस्यता दिखाई है और भक्तों के अवसर दिया है, इसलिए वे भूरी भूरी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप लोग आए बहुत शांति से इस कथा में, इस यज्ञ में भाग लिए, तो यह आपका सौभाग्य है और आगे भी आना चाहिए और अपने स्वजनों को लाना चाहिए। ऐसे उत्सव तो सब जगह होते हैं, लेकिन जो भगवान के धाम का जो सुजोग मिलता है वो कुछ और ही है। देवता लोग इति इस प्रकार श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे तो वे लोग आए स्तुति करने के लिए, सब देवगण स्तुति करने आए, और भगवान की जय जयकार करके, भगवान से प्रार्थना करके, उनका गुण गाकर देवता सब स्वर्ग गए। भगवान के रूप का वर्णन किया गया इस स्तुति में, जिसको गर्भ स्तुति कहते हैं। भगवान गर्भ में है तो देवता लोग उन गुण गा रहे हैं, इसको गर्भस्तु कहा गया। बहुत प्रसिद्ध स्तुति है। श्रीमद् भागवतम में अनेक स्तुतियां हैं, अनेक प्रार्थनाएं हैं, उनमें गर्भस्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जद रूपम अनिदम, जद रूपम, इनका रूप, भगवान का रूप कैसा है
अनिदम इदम ऐसा हम और जगत में रूप देखते हैं क्षणिक डर दुख में, ऐसा भगवान का रूप नहीं है। आकार ऐसा है, आकार मनुष्य का है, परंतु रूप है ऐसा नहीं है, कर्मों से बना हुआ नहीं है, वास्तव में उसका जन्म नहीं होता है उस रूप का, न तो मन होता है, तो भी उसमें क्षय होता है, व्यय होता है, बुढ़ापा आदि रोग आदि नहीं होता। जद्रूप अनिदम, और देवता सब कंस के कारागृह से निकल रहे थे तो ब्रह्मेश अनुरोध है, ब्रह्मा जी को और भगवान शिव को आगे करके चले। हमेशा देवता लोग किसी बड़े के पीछे चलते हैं, यही देवताओं का स्वभाव। वे आए तो ब्रह्मा जी और शिव जी पीछे पीछे आए, और गए तो पीछे पीछे गए। इस पर हरिश्वरी जी लिखे हैं भक्ति रसायनम में कि देवता क्यों ब्रह्मा जी और शिव जी के पीछे जा रहे हैं, तो सारे देवताओं ने सोचा कि हम लोग अगर चले जाएंगे तो ये लोग फिर कोई स्पेशल लीला देखेंगे, इसीलिए हम लोग भी देख लेंगे, तो इनको छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। तो शायद निकलना हुआ कंस कारागृह से, तो देवताओं ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी से कहा कि निकला जाए, हम लोग पीछे चलने वाले हैं, हम लोग पीछे भेजे जाएंगे। इसलिए यहाँ यह बात कही जाए कि ब्रह्मेशानव ब्रह्मा और शिव को पुरह के सामने आगे रखकर, ब्रह्मा और शिव को आगे करके तब निकले। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग को भेज करके और ये लोग यहाँ पर कुछ दूसरा आनंद ले तो हम लोग वंचित रहेंगे, जब तक हैं तब तक हम लोग भी देखें। तो जब चले गए, अब भगवान के अजन्मा के जन्म का समय आ गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कैसी प्रकृति की दशा थी, आकाश कैसा दिख रहा था, पृथ्वी कैसी रही थी, वायु कैसा था, पानी कैसा हो गया, अभी कैसा हो गया। इससे जगत में भगवान जब अवतार ले रहे हैं तो प्रकृति सज धज करके तैयार हो गई भगवान का स्वाल करने के लिए। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभ, अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभ, सबसे पहले काल का वर्णन रहे। काल का अर्थ है टाइम, समय, और समय को जैसा कि हम लोग कई भाग में बांटे हैं, तो भाद्र कृष्ण अष्टमी का समय आया। यह काल का पुत्र है। काल की सबसे बड़ी सीमा द्विपरार्ध है, ब्रह्मा जी की आयु, और यह तो बहुत सीमित। काल परम सुंदर हो गया, काल कभी सुंदर नहीं होता है, ऐसे सब समय देखते हैं। कोई कहे कि आपका काल आ गया तो क्या ये सुंदर बात है, काल शब्द सुनते ही भयावह लगता है, और वास्तव में काल कभी सुंदर नहीं होता है। लेकिन जब भगवान जन्म लेने वाले थे तो काल भी परम शोभना, परम सुंदर हो गया। काल का क्या कार्य है, काल का कार्य है विनष्ट करना, विरूप करना, अदृश्य कर देना किसी चीज को। यद्यपि काल जन्म भी देता है, लेकिन काल का मुख्य काम है कलयति इति काल, जो गिन गिन करके और खत्म करता जाए उसका नाम है काल। जब जगत के विध्वंस भयावह है, बहुत भयावह है, लेकिन काल के कुछ गुण हैं, तो काल अपने समस्त गुणों से युक्त हो गया है और समस्त दोषों से मुक्त हो गया। सर्व गुणों पेत, यह सर्व गुणों पेत का अर्थ काल के कुछ गुण जैसे हम लोग अनुभव करते हैं, जैसे बसंत काल है, वर्षा काल है, या शिशिर काल है, या हेमंत काल, ऐसे काल के कई अंग हैं। तो कुछ न कुछ गुण होता है, जैसे वर्षा काल में वर्षा होना और फल फूल वृक्ष आदि की उन्नति होना, गर्मी में जलते हुए जीव वर्षा काल में शीतलता पा करके तृप्त हो जाते हैं, सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, तृण बढ़ने लगते हैं। वर्षा ऋतु का यह एक गुण है। इस प्रकार से बसंत का गुण है, विविध फूल खिलते हैं। इसी तरह से काल के कुछ न कुछ गुण है सब समय, तो काल सब गुण से युक्त हो गया। इसका अर्थ यह है कि बसंत की जो छटा होती है वह भी उपस्थित थी, और गर्मी में जो विशेषता है वह भी थी, और हेमंत ऋतु की जो विशेषता थी, शिशिर ऋतु की, शरद ऋतु की, सब उपस्थित सर्व गुणों पे तो इसको कहते हैं। जितने प्रकार के फूल खिलते हैं इस प्राकृत जगत के भीतर वो उस दिन खिल गए, ऐसा आगे वर्णन आएगा, तो काल परम सुंदर लगने लगा। काल क्यों परम सुंदर लगने लगा, क्या बात हो गई? तो अजन्मा का जन्म सोच करके काल बहुत खुश हो गया। हरीश्वर जी कहते हैं कि आज तक सारे विद्वानों ने भगवान का ऐसा ही वर्णन किया था कि भगवान कालातीत हैं, काल के अंदर नहीं आते हैं, और आज काल के अंदर आ रहे, इसलिए अभी खुश हो गया। काल भी खुश हो गया कि हमारे भीतर आ रहे हैं, भादो के महीना में अष्टमी के अंदर आ रहे हैं, तो आखिर हमारे ही अंदर आए, क्योंकि भादो का महीना काल का एक अंग है, और उसका भी अंग है अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष, यह काल का अंग है। तो काल अब तक बहुत निराश होता था, जब भगवान का वर्णन होता था तो कहा जाता था भगवान काल से परे हैं, काल से अतीत हैं, लेकिन जब काल के अंदर होकर के वे आ रहे हैं तो काल बहुत सुंदर हो गया, माता देवकी की तरह काल की शोभा बढ़ गई। ये बहुत ही अच्छी उक्ति है हरीश्वरी जी की। अब तक काल रोता था, अब सदा काल भगवान का वर्णन किया जाता था कि भगवान को काल नहीं पकड़ सकता, काल से परे हैं, यह है वह, ऐसा वर्णन किया जाता था, तो काल बहुत निराश रहता था। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान काल के सीमा में आ गए हैं और काल उनको इतना दिन रखेगा और इसके बाद मार देगा, यह बात नहीं है। लेकिन फिर भी आगे चल करके लोग कहेंगे कि भगवान भादो के महीना में जब अष्टमी के दिन आए, तो यह काल का ही तो वर्णन है, तो इसलिए काल बहुत सुंदर हो गया, सब प्रकार का गुण काल में छा गया और सब सर्व दोष विवर्जित हो गया। अथ सर्व गुणों पे तह काल परम शोभना, क्योंकि जर ही एवं अजन जन्म अक्षम सांत्र छह तारकम, जब भगवान के जन्म का समय आया तो उस समय रोहिणी नक्षत्र उपस्थित हुआ। रोहिणी नक्षत्र, इस पर भी हरीश्वर जी कहते हैं भगवान ने सोचा कि हमारी माँ रोहिणी भी है, तो मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ तो कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लूंगा, तो मान लिया जाएगा कि रोहिणी से भी जन्म लिया हूँ। भगवान शायद यही सोचकर रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न हो रहे हैं, जन्म ले रहा हूँ माँ रोहिणी का मन रखने के लिए। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेना तो रोहिणी से जन्म लेना, भगवान एक ही साथ बहुत बहुत बात सोच लेते हैं, वो क्या करना है, इसका क्या प्रभाव होगा। एक मनुष्य भी कई बात सोचता है एक काम के पीछे, तो भगवान तो अनंत बात सोच लेते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हुआ तो उस समय सांत्रक्ष ग्रह तारकम, सभी नक्षत्र ग्रह और तारे बिल्कुल शांत थे। शांत का अर्थ है कि कोई किसी के मार्ग का अतिक्रमण नहीं कर रहा था और सभी अनुकूल थे। किसी व्यक्ति के जन्म के समय यदि ग्रह सभी अनुकूल रहे तो ग्रहों की अनुकूलता से उस व्यक्ति का बहुत अभ्युदय होता है। तो ग्रह सब अपने को ग्रह लग्न वार तिथि जो भी एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के अंग हैं अपने को धन्य करने के लिए सब अनुकूल हो गए, सभी अनुकूल हो गए अपने को धन्य करने के लिए। ऐसा नहीं कि उनके अनुकूल होने से भगवान का मंगल होने वाला है, इनकी शोभा बढ़ेगी। तो सारे ग्रह सारे नक्षत्र वार तिथि लग्न सब अनुकूल हो गए, सब बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवान के जन्म में ये दक्षिण उपस्थित किए, अनुकूलता उपस्थित किए। संतरक्ष ग्रह तारकम दिशः प्रसेदुर गगनम निर्मलो डुगणोदयम, दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाओं का तात्पर्य है जैसे चार दिशा है, चार कोण है, ऊपर नीचे दस दिशा माने जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इंग्लिश के साथ चार कोण और ऊपर और नीचे, ये दस दिशाएं। दिशाएं प्रसन्न हो गई। इस पर टीका में बात लिखी गई, दिशाएं रोती रहती थी भगवान के आने के बिना। क्यों? कि दिशाओं के जो पति थे वे बहुत संकट में पड़े हुए थे। दिग्पाल जिनको कहते हैं, दिग्पाल का अर्थ है दिशा के स्वामी। इसका अर्थ है कि भगवान इस सारे जगत को विविध जोन में बांटे हैं और विविध दिशा के अधिपति विविध देवता होते हैं, परंतु कौन से और अन्य असुरों के अत्याचार से दिग्पाल लोग दिशाओं का पालन नहीं कर पाते थे। वे अपना ही गुजारा करने में लगे हुए थे बेचारे, और दिग्वर्ती जीवों का क्या पालन करें, बहुत दुखी थे। लेकिन जब दिशाओं ने देखा कि अब हमारे पति असुरों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो दिशाएं प्रसन्न हो गए। दिशाओं को स्त्री के रूप में कहा गया, दिशा का दिशा स्त्रीलिंग है भी, तो दिशा अर्थात दिशाएं प्रसेद प्रसन्न हो गई। इस प्रसन्न होने का अर्थ है कि जिधर देखिए उधर से ऐसा ही लगता था जैसे आनंद उमड़ रहा हो, आनंद उमड़ रहा हो। भगवान अभी गर्भ में है और यह प्रकृति बिल्कुल सुंदर हो गई। जिधर देखिए उधर से आनंद की ध्वनि हो रही है, किसी भी दिशा से आनंद आनंद आनंद। सुर लोक आनंद था, देवताओं का लोक स्वर्ग बहुत सजाया गया था। अपने आप देवताओं के पास तो प्रचुर धन है, सब कुछ है, तो वे उस समय सबसे बेस्ट डेकोरेशन किए थे और अपने आप स्वर्ग बहुत अच्छा हो गया था, पृथ्वी अच्छी हो गई थी। निर्मलोट गणोदय गगनम, गगन कैसा था, आकाश कैसा दिख रहा था, निर्मल उडु गणोदय उसमें निर्मल खूब चमचम चमक रहे थे तारे और बहुत सुंदर लग रहा था आकाश। सब चीज अपने जब स्वरूप में होता है तब सुंदर लगता है। जो सुंदरता होनी चाहिए आकाश की वह थी। सबके बाद किसी तरफ जो आनंद हो, और जैसे व्यर्थ धूली कण या व्यर्थ धुआं या व्यर्थ बादल आदि न हो तो आकाश बहुत सुंदर लगता है। और इसी से नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल यह न रहे तो आकाश सुंदर लगता है। वास्तव में सुंदरता सुख को कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यदि सुखी है आनंद में है तो अपने आप सुंदर लगता है। शोभा का अर्थ केवल बाहरी चमक दमक नहीं होता है, शोभा का अर्थ होता है कि जीव प्रसन्न है। ये कोई वस्तु अपने स्वरूप में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लोटा रखा गया, यदि लोटे को खूब अच्छा से मांझ दिया जाए, धो दिया जाए, और जब अपने स्वरूप में होता है तो इसको कहते हैं प्रसन्न, चमचम चमक रहा है, उसको प्रसन्नता कहते हैं। तो जब जीवों के हृदय में आनंद होता है तो यह उनकी शोभा है। स्वर्ग बहुत अच्छा लग रहा था, देवताओं के लोक बहुत अधिक चमक रहे थे उस समय। ऊपर के जितने भी लोक हैं वे टिमटिमाते हुए तारों के रूप में दिखाई देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ से वे छोटा दिख रहे हैं। बहुत सुंदर ध्वनि आ रही थी चारों तरफ से, जय हो, सारा ब्रह्मांड भगवान का गुण गा रहा था। असुरों के हृदय में बहुत भारी धकधकी हो रही थी, उनका पल्स बढ़ गया था। अपने आप पता नहीं क्यों कौन सा दुख आ रहा है, लिखा गया है। और भागवत में एक जगह लिखा गया, जिस समय भगवान ने वाराह देव मारने की इच्छा की है हिरणाक्ष की, तो उस समय दीपि के स्तनों से खून चूने लगा। अपने आप खून, जहां से दूध चूता है वहां से रक्त चूने लगा। और उसके बाद भगवान ने, जब भगवान ने सुनाभ का स्मरण किया था, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, तो उसी समय खून आने लगा। एक भी सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसका वध नहीं किया, लेकिन फिर भी जब ही सुदर्शन चक्र का स्मरण किया तो दीति के स्तनों से खून बहने लगा। असुर जो थे उनके हृदय में धकधकी बढ़ गई, पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है। अब तो भगवान आने वाले हैं और सभी असुरों को ठीक करके जाएंगे। देवताओं का और सज्जनों का मन बहुत प्रसन्न हो गया, और जीवों का तो आकाश प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे बहिरंगा शक्ति भगवान की, भगवान के स्वागत के लिए बहुत बड़ा विपाल आकाश में तान करके और उसमें जगह जगह टिमटिमाते हुए श्रृंगार देख कर रखे। जब किसी बड़े व्यक्ति का स्वागत किया जाता है तो आपने देखा होगा चांदनी तानी जाती है, जिसके भीतर वो बैठता है या चलता है, तो सारा संसार ही ऐसा लगता है, तो सारा आकाश की भगवान के लिए चांदनी तानी गई है और चमक रहे हैं बीच बीच में तारे। यह भगवान के आने पर जगत की दशा होती है। निर्मल उडुगलोदय मही मंगल भूष्ट पूरा ग्राम ब्रजा करा, वही पृथ्वी ज्योति थी। और एक बार रोक करके गौ के रूप में ब्रह्मा जी के साथ गई थी क्षीर समुद्र पर। बेचारी हमेशा विलाप करती रहती थी, लेकिन भगवान के गर्भ में आ जाने पर पृथ्वी परम सुंदर सज करके तैयार हो गई। मंगल भूष्ट, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा मंगल का दिन या मंगल की दशा होती है जब उसका विवाह होता है। और खास करके मान लीजिए पति परदेश में है और पति आ रहा हो, तो उस समय पत्नी अपने को सजाती है, तो उसको क्या वासक सज्जा कहते हैं, वासक सज्जा, आठ प्रकार की नायिका होती है, इसको वासक सज्जा कहते हैं, जो अपने घर को और अपने देह को सजा कर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है, उस नायिका को वासक सज्जा कहते हैं। तो वास्तव में भगवान प्रियपति है, यह पृथ्वी भगवान के बिना रोती रहती है, लेकिन आज जब भगवान गर्भ में आ चुके हैं तो पृथ्वी अपने को पूर्ण रूप से सागर के रखती है। मंगल पुष्ट, इसका अर्थ है कि जितने भी पुष्प खिलते हैं सब खिले हुए हैं, वृक्ष खूब प्रसन्न है और भी सरिताओं में शुद्ध जल भरा हुआ निर्मल। भादो का महीना है, जबकि भादो के महीने में नदियों में शुद्ध जल नहीं बहता है, सरोवरों का पानी भी थोड़ा सा मटमैला होता है, परंतु भगवान के आगमन पर पानी अपने आप शुद्ध हो गया। जिस शरद ऋतु के आने पर पानी शुद्ध हो जाता है, भगवान के आगमन नदियां शुद्ध हो गए और सरोवर शुद्ध हो, पृथ्वी सज धज कर वासक सज्जा इसी की तरह तैयार हो गई। मही मंगल भूष्ट पूरा ग्राम ब्रजा करा, पृथ्वी पर क्या क्या है, ग्राम ब्रज और आकर विशेष रूप से, तो गांव नगर बहुत अच्छे लगने लगे, सब अपने आप सज गए ना किसी के सजाए। पूरे रहते हैं जहाँ बाजार रहता है, और राजधानी जहाँ सरकारी आदमी रहते हैं मंत्री लोग राजा लोग उसको पूर्व कहते हैं, और ग्राम का अर्थ होता है वह बस्ती जहाँ पर बाजार नहीं होता है तो उसको गांव का, और ब्रज ब्रज का अर्थ है जहाँ गौवें रहती है। ब्रज बहुत सर लगने लगे, स्पेशल इसमें आ जा रहे हैं ब्रज के लिए, क्योंकि भगवान है ब्रज में बहुत दिन रहेंगे, तो पृथ्वी के जितने भी ब्रज थे वे सब बहुत सुंदर लगने लगे। आकरा खनिज द्रव्य सोने चांदी हीरे आदि की खाने बहुत सुंदर लगने लगे, और खान ये सब अपने आप ऊपर धनों को कर देते थे उस समय किए थे, खोद करके मनुष्यों को निकालने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान के जानवर या पृथ्वी सब उत्पन्न रही थी। आकर और पूरा ग्राम, तो ग्राम से यहाँ पर तत्पर्य की पृथ्वी के जितने नगर थे सब सुंदर लगने लगे, जितने गांव थे, क्योंकि भगवान जन्म लेंगे नगर में और जाएंगे गांव में, तो इसीलिए सब गांव सुंदर हो गए। वैकुंठ में रहने वाले भगवान यहाँ आकर गांव में रहेंगे, ब्रज में रहेंगे, नगर में रहेंगे, इसीलिए सब बहुत सुंदर लगने लगे। सज धज गए नद्यः प्रसन्न सलिलादा जलधः श्रियः, नदियों पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। स्वच्छ का अर्थ है उसमें कोई भी अंतु गंदगी नहीं थी और बहुत स्वादिष्ट अमृत जल स्वाद और सुंदर, और जितने सरोवर थे उनके जल शुद्ध हो गए और सरोवरों में कमल खिल गए। जलरुह श्रीय, जबकि रात्रि के समय कमल नहीं खिलते हैं, लेकिन भगवान के आगमन के समय सारे कमल खिल गए और सही सरोवरों में गह भरे हुए थे कमल। भगवान आने पर कोई भी निकल सकता है, सूर्य आने पर कमल खिलते हैं दिन के समय में नहीं, लेकिन भगवान के जन्म के समय सभी कमल खिले। जलरुह श्रीय विशालिकुल सन्नाद स्तवन राजय, और वृक्षों में फूल भर गए फल भर गए, वृक्ष इतने प्रसन्न थे उनकी प्रसन्नता के कारण अपना फल आ गए और फूल आ गए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि वृक्ष ये सोच रहे हैं कि इस अवतार भगवान सबसे अधिक प्रेम हमों से करेंगे, वो फूल की माल पहनेंगे, कोमल कोमल पत्तों से प्रीत बांधेंगे और सदा वन में विहार करेंगे, हमें झूला लेंगे, हमारे नीचे विश्राम करेंगे। वृक्ष इस आनंद में हो गए, हम वृंदावन में आएंगे और वृक्ष से बहुत प्रेम करेंगे, वास्तव में भगवान वृक्षों से बहुत करेंगे और बहुत सरणिक किया, उतनी प्रशंसा भगवान कभी किसी की है जितने वृक्षों की प्रशंसा की है, दो बार प्रशंसा की है। इसका तय कि प्राय प्रतिदिन भी आते थे प्रशंसा, और वृक्षों के उत्पादन प्राय धारण करते पत्र पुष्पम फलम, तो गीता में जो चार चीज भगवान मांग रहे हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम, तो तोयम तो जम जिसे लेते थे या कुंडों से, परंतु ये तीन वर्ष तो वृक्षों से रहते थे। भगवान डायरेक्ट देते थे फल को, वृक्ष की इच्छा रहती थी कि कृष्ण हमारा फल खाए, झुक जाते भगवान कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में चलते कांवों के साथ, तो ऊंची ऊंची शाखा वाले वृक्ष उनके आगे ऐसे झुकते झुकते झुक जाते थे, उठ पकड़ के अंदर थे और भगवान स्वागत करते थे फलों को लेकर डायरेक्ट फल लगाते थे खाते थे और कहते हो कितना मधुर फल, कितना मधुर फल, इस तरह से खाते थे। फूलों को तो कभी डायरेक्ट खोस लेते अपने केस में, पत्ता तोड़ श्रृंगार करते थे, तो वृक्षों का बहुत सौभाग्य रहा। नदियां प्रसन्न हो गए क्योंकि नदियों ने सोचा, आज तक नदियां यही सोचती रहती थी कि केवल गंगा जी का सौभाग्य है वे भगवान के चरण से निकली है, हम लोग तो भागली है उधर से निकल माथा पीटती हुई समुद्र में गिरती है, कभी सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन नदियों ने सोचा कि इस अवतार भगवान सबसे अधिक सौभाग्य देंगे यमुना जी को, यमुना में जो विहार करेंगे तो यमुना जी को भगवान के सभी अंगों का रस मिलता है। जब तैरते थे तो उनके ओठों का आंखों का उसमें कुल बैठे यमुना जी बहुत प्रसन्न हो जाते। नदियां ये सोच रहे हैं कि इस जन्म में हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा, और इतना ही नहीं यमुना जी भगवान की पटरानी भी बनेंगे, तो यह भी बहुत सौभाग्य का कारण था। प्राय भगवान प्रतिदिन जल विहार करते हैं, और सरोवर सरोवर सब बहुत प्रसन्न हो गए क्योंकि इस अवतार में भगवान सरोवरों से बहुत प्रेम करेंगे, तालाबों से। ब्रज में बहुत कुंड है, जहाँ जाइए वहाँ कुंड सरोवर भरे पड़े हैं आज भी। और जब भगवान गर्भ में आए तो ये सब प्रसन्न हो गए, सविताएं प्रसन्न हुई, और द्विजाली कुल सन्नाद स्तबका वनराज है। जितने भी वृक्ष थे उनमें स्तबक भर, स्तबक का अर्थ होता है नए नए पत्तों से युक्त फूल, गुच्छा कहते हैं उसको, सब भर गए। और द्विजाली कुल सन्नाद पक्षी और भौरे नाद करने लगे, सब कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आपने देखा है कि रात्रि में पक्षी नहीं बोलते हैं, चुप हो जाते। भगवान अजीब स्वभाव बनाए हैं जीवों का, पक्षी रात्रि में एकदम चुप हो जाते, जो दिन भर चेंची करते रहते हैं ये रात्रि में बिल्कुल चुप। लेकिन जब भगवान का जन्म होने का समय था तो पक्षी खूब बोल रहे थे अपनी अपनी भाषा में, कोयले कूक रहे थे, चातक बोल रहे थे, मयूर बोल रहे थे, सभी पक्षी अपनी अपनी भाषा में भगवान के गुण बोल रहे थे, बहुत बहुत प्रसन्न थे। पक्षियों की प्रसन्नता का इतना क्या कारण था, इस पर हरिश्वर जी कहते हैं कि वृंदावन में भगवान प्रत्येक पक्षी के शब्द की नकल करेंगे। इस बार कोयल जैसा कूकेंगे जा रहा प्राय रोज ही, तो कभी कभी भगवान कोयल की नकल करते थे, कोयल उड़ करके दूर जाते थे तो उसका कहते थे तुम्हारे मधुर कंठ से लज्जित होकर के भाग रहा है, तुम अधिक अच्छा बोलते हैं। और पक्ष बहुत प्रसन्न थे कि हमारे जाति के एक व्यक्ति के पंख को त्यागे हुए पंख को परब्रह्म भगवान अपने मस्तक पर धारण करेंगे, तो वे तो आनंद में थे, धन्य है मयूर है। अगर इस विचार से देखा जाए तो भगवान इस जीवन मनुष्यों को सौभाग्य नहीं दिए, देवता को नहीं दिए, जो मोर को दिए। संस्कृत में मयूर शब्द है तो हिंदी में मोर कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए मयूर कितना खराब पक्षी है, एक तो घोर वन में होता है, आवाज भी अच्छा नहीं है, और बहुत कायर होता है, थोड़ा सा आवाज होता है करने लगते है, और शरीर तो ऐसा है पर आदि और सारा शरीर लगता है कई रंग हो गया है, ठीक नहीं लगता है। वे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इसे ठीक नहीं है, और आहार सांप मयूर सांप खा रहा है, लेकिन जब से श्री कृष्ण ने मयूर पंख सिर पर धारण कर लिया तो सब लोग इसको मोर मोर कहते हैं, ब्रह्मन मेरा 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 तात कहे सब मोर, ये मेरा है मेरा है, मोर का यही अवसर है मेरा है। जब से हरि पक्षधर हो गए पंख धर कर लिए पंख और पक्ष, जब से श्री कृष्ण पक्ष ले लिए मयूर का, तब से सब लोग मयूर को मेरा कहते मोर कहते, और मोर का पंख भगवान धारण करते हैं। जो पंख अब पुराना हो गया है और उसको ऐसे त्याग देता है, उसके त्यागे हुए अंश को भगवान गौरव के साथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसीलिए पक्षी खूब आनंद में है, गा रहे हैं। पक्षियों से भगवान बहुत प्रेम किए। ये बलराम जी से वर्णन किया है भगवत में, देव देखिए ये मयूर नाच रहे हैं, ये कोकिल गा रहे हैं, सब भौंरे गा रहे हैं, आप इनके घर में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए ये आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिए यही सताम निसर्ग, यही सज्जन स्वभाव होता है। और भौरे जब पान के माला पर बैठ करके चलते हैं और बलराम जी किला पर, तो ये कहते हैं भगवान हे देव हे प्रभु देखिए ये भौरे आपका सन नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ये जाए, जन भी कौन है ये वास्तव में आप इनके दास है, देवक है, मुनिजन है। और आपको देखे कि आप वृंदावन में मनुष्य कर रहे हैं तो ये भी आ गए हैं, इसलिए लोग आपका सन नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान अपने भाव का वर्णन बलराम जी लागू कर रहे हैं, ये सुना रहे हैं मैं आपके सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ। तो इस तरह भगवान वर्णन किया है, यही भगवान का अवतार है जो सब जीवों को आकर्षित किए है, पशुओं को, पक्षियों को, नदियों को, सरोवरों को, पर्वतों को। पर्वत को तो भगवान ने इतना मान दिया, क्या विभर की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते थे? जिनकी दृष्टि से सृष्टि होती है वे प्रभु चाहे तो इंद्र को ही मना सकते थे, रक्षा कर सकते थे, लेकिन गिरिराज जी गोवर्धन को उन्होंने वह बोल दिया कि गिरिराज जी रक्षा की ब्रज की, गिरिराज जी रक्षा की, गिरिराज जी का रक्षा की, गिरधारी रक्षा किया वो किसी भी तरह से कर सकते, लेकिन है पर्वत कर्ण ने कितना आदर दिया। सात दिन सात रात तक अपनी उंगली धारण किए रहे और गिरिराज जी की गुहा में खेलते थे, राज्य के पत्थर और रख करके कहते थे बरसात के दिन में राजते थे, गिरिराज जहाँ तहाँ कौन रहते थे तो श्री कृष्ण डायरेक्ट कभी कभी उसको कर निकाल कर उसमें खाया कर उन्हें चराते थे। गिरिराज घास देते थे, लकड़ियां देते थे, औषधि देते थे, झूला झूलते थे उधर भगवान। तो इसीलिए सार पर्वत सुखी है, सभी वृक्ष सुखी हो गए, सारे पक्ष सुखी हो गए और देवता तो असुने ही थे, देवता प्रसन्न थे, भगवान ने सबको प्रसन्नता। बबो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध सुशी, वायु हवा बहुत प्रसन्न है, हवा मंद मंद बह रहा था, हवा में वायु में सुगंध भर गई और सिकुड़ता है, जितना से तत्पर गर्मी का अभाव, ऐसा नहीं समझ रहे कि विंटर सन की हवा चल रही है, शीतल सुगंधी और मंद, ये हवा तीन गुण है, मंद समीरे जमना तीरे बसत बन बसत बने बनाए। इंदिरा में जगह है जिसको धीर समीर कहते हैं, आज भी आप जाकर देखिए तो हवा बहुत ही धीर बन करके बढ़ी है, कोई तेज नहीं चलती, धीर समीर है उसको कहते हैं भी आज भी है। धीर समीर है जमुना तीर वसत ने बनना भी, कोई सखी राधा रानी से कह रही है कि सखी क्यों इतना कठोर बन रही हो, तुम्हारी प्रतीक्षा कृष्ण बैठे हैं जाके तीर पर, धीर समीर पर बैठे हैं, वन में बस रहे हैं, चलो अपने जीवन सफल करो और कृष्ण का मनत पूरा करो। जब राधा वहाँ गई तो भूल नहीं रहे थे भगवान कृष्ण से, जयदेव जी लिखे हैं कि भगवान आकर के चरण में गिर करके और रिया जी को मना रहे, प्रतिदिन भगवान की लीला है, उनको मान मनाने बहुत अच्छा लगा। ऐसी घटना है कि जयदेव जी जब लिख रहे गीत को भी तो स्मरण गरल खंडम सिर सिमंडनम देते पल्लव उदारम, लिख रहे थे गीत को भी तो लिख दिए स्मर गर खंडनम मम सिर सिमंडनम दे पद पल्लव उदारम, मेरे हे श्री राधे मेरे सारे दुखों को नष्ट करने वाला अपना चरण कमल मेरे माथे पर रख दो, मेरे सिर पर करो। जब यह लिखना था तो वे हिचक गए जयदेव जी, पर ब्रह्म भगवान किसी स्त्री के चरण को अपने माथे पर मांगे तो थोड़ा वे हिचकिचा गए, लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। समय हो गया। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि दो धोती है और मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, टाइम ज्यादा हो गया था सोचने में, तो चले गए स्नान करने। और भगवान श्री कृष्ण जयदेव जी के रूप में आए, एकदम हूबहू रूप मांगे गया, थोड़ा सा कलम देना और उसमें कुछ मैं सोचा कुछ सुधारना है। तो उनकी पत्नी पूछ रही है, भगवान लिखे मम सिर सी धे हिते पद पल्लव उदार, मेरे सिर पर अपने उदार चरण कमल को रख दो। भगवान लिख कर दे और बहुत सुंदर अक्षर है, जयदेव जी के अक्षर से बिल्कुल भिन्न। जब जयदेव जी स्नान करके आए और ये देखे उस अक्षर को, ये कौन लिखा, तो उनकी पत्नी कहती आप अभी तो आप आकर के लिख करके गए, कब अभी अभी तो आप लिख करके गए। तो जयदेव जी का अक्षर देखे तो ये समझ गए कि ये भगवान का लिखा हुआ है, और ये घटना सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए, हृदय से लगाए माथे से, और तब से गीत गोविंद में वह पद है धीर समीर की लीला, धीर समीरे चलना तीरे वसती बने बन माली। तो वायु बहुत प्रसन्न हो गया, सुगंधित हो गया, शीतल हो गया और मंद गति से चलने लगा। हरीश्वरी जी कहते हैं कि इस अवतार में वायु को बहुत सेवा करने का अवसर मिलेगा। वायु यह सोच रहा है कि जब श्री कृष्ण गोचारण करेंगे और रासलीला करेंगे, उनके शरीर में पसीने के बंदे उभरेंगे तो मैं सुखाऊंगा। तो अभी से प्रैक्टिस करने लगा कि कैसे कैसे कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे मान लीजिए कोई कृष्ण को पंखा भी झल रहा है तो आखिर पंखा थोड़े सेवा कर रहा है, वो तो हवा सेवा करता है, पंखा सेवा नहीं कर रहा है। पंखा सेवा कैसे करेगा, उसको अगर शरीर में सटा सटा करके कीजिए तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पंखा जो है हवा को आंदोलित करता है, तो हवा ही सेवा कर रहा है। तो वायु अभी से अभ्यास करने लगा कि श्री कृष्ण के पसीना को सुखाना है, सुख देना है। तो मंद गति से चलने लगा, लगता था जैसे मिलिट्री के जवान परेड करते हैं, वैसे वो अपनी गति सुधारने लगा। बहुत जोर से नहीं चलूंगा, मंद गति से चलूंगा, श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। तो हवा अभी से बहुत सुंदर हो गया, भवो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वह सुचि, सुख स्पर्श से मंद गति बोध हो रहा है और पुण्य गंध वह से सुगंध और शीतलता, सुख स्पर्श से भी शीतलता और नमस। और जैसे आजकल हम लोग देखते हैं एसी रूम में किस वस्तु का स्पर्श हम लोग करते हैं, हवा का, एयर कंडीशन्ड। तो एयर जो है वो कंडीशन्ड है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार उसको सेट किया जा रहा है, एक निश्चित शर्त की जाती है वायु से हमको ठंडा रहना ठंडा रहना। तो अंततः हवा ही हमारी सेवा कर रही है, वायु सेवा कर रहा है। तो संपूर्ण वायु ही भगवान की सेवा का प्रैक्टिस करने लगा पूरे ब्रह्मांड में, इतना इतना मंद गति से चलना है और इतना शीतलता रखना है। श्री कृष्ण की सेवा के लिए सच करते हैं अग्नयश्चत्र जाति नाम शांताश्चत्र समिंधता। कंस के अत्याचार से ब्राह्मणों की यज्ञाग्नि सदा सदा के लिए बुझ गई थी, कभी हिम्मत नहीं थी कि आग जल जाए, क्योंकि कंस का ऑर्डर था कि देवताओं का भोजन नहीं पहुंचना चाहिए, यज्ञ एक भी नहीं होना चाहिए। जहां भी पता चल जाता था कि यहाँ यज्ञ होता है तो वहां जाकर के यज्ञ करने वालों को बहुत पीटता था, देश से निकाल देता। रामायण में वर्णन है रावण के अत्याचार का, ते ही बहुविध त्रासय देश निकासय जो कह वेद पुराण। जो लोग वेद पुराण से कथा कहते थे उनको बहुत पीटता था रावण, और देश से निकाल देता। कंस तो उससे भी दुर्दांत दैत्य था, बहुत खल था। अपने संबंधियों को ही जेल में बंद करके मारता जाता था, भांजों को तो भगवान के साथ कितना पैर हो गए। ब्राह्मणों के यज्ञ में अग्नि कभी जला ही नहीं डर के मारे कंस के, लेकिन जब भगवान गर्भ में आए तो बिना आग जलाए यज्ञ कुंड में अग्नियां जलने लगी धीरे धीरे। शांत स्तत्र समींद्र था, जो शांत अग्नियां थी वे अपने आप बिना लाइटर के बिना माचिस के वो जलने लगे अपने आप। अब देवताओं को भोजन मिलेगा, अब शुभ कर्म होंगे, यज्ञ होंगे, तो अग्नि बहुत प्रसन्न। हरीश्वरी जी कहते हैं कि अग्नि को आज तक भगवान का मुख कहा गया है वेदों में, मुखाद अग्नि रजायत, भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है। इस अवतार में भगवान डायरेक्ट दिखाते हैं कि सचमुच मुख जो है भगवान का अग्नि का जन्म स्थान है और निवास स्थान है। दो बार आग लगेगी और भगवान अग्नि को कहाँ स्थान देंगे, अपने मुख में, तो मुखाद अग्नि रजायत, तो जो जहाँ से वस्तु जन्म ली है वही रहती है। तो अग्नि सोचता था कि मैं भगवान के अंग से उत्पन्न हुआ हूँ, मुख से उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन लोग कैसे जानेंगे कि वास्तव में मेरा स्थान भगवान का मुख है। तो इस अवतार में भगवान आग पी करके बताएंगे कि अग्नि मेरे मुख से निकला है और मेरे मुख में रहता है, मुखाद अग्नि रजायत। इसीलिए
करेंगे
संसार में प्रायः मनुष्यों का संबंध